बेहाल हो गया। तो एक असुर ने बताया कि देव केवलम बकमत्र बलमवलम्बानहे युतस्तजाता एव दंभ संभारा गंभीरायन्ते। बोले महाराज, ये बक जो है बकासुर, अब तो इसके बल का आश्रय करना चाहिए। अब वो बगुले की जात ही दंभी होती है। बगुला जात से दंभी होता है और ये जहां जाता है वहीं गहरा जाल दंभ का फैला देता है। तो बकासुर माने गंभासुर। तो अब इसकी इससे काम लिया जाए। याद कराया मंत्रियों ने पहले की बात, इनके जीवन की एक घटना थी पहले की कंस की। बोले आप कहा करते थे ना, उस दिन सुनाया था आपने। हाँ, बोले ठीक। मन सूत्रम सैव केवल स्वतंत्र स्थापना स्थापित। हाँ ठीक ठीक, याद आ गई मुझे। वो तो मेरा मित्र है, बड़ा सुहृद है मेरा बकासुर, उसको भेजा जाए। तो ये बात पहले की बात क्या थी कि पूतना जो रही ना, पूतना उसका ये भाई रहा बकासुर, छोटा भाई रहा, तो राक्षस था। तो ये लड़कपन में साथ साथ खेला करते थे कंस और बक। तो ये बक बड़ा बलवान था, तो बक ने एक दिन कंस को उठा के मुंह में डाल दिया। तो कंस में बड़ा बल था, तो अंदर जाके वो बाहर तो निकल ही आया, इतना उसने बल दिखाया भीतर कि वो उसने उगल दिया। वो निकल तो आया और फिर उसको उठा के पटका भी बक को, लेकिन उसके बल की छाप पड़ गई उसके हृदय पर, इसलिए पूछना दौड़ी। पूछने कहा कि तेरे मेरे भाई को ऐसा कर दिया, तो लड़ मेरे से। पूछना बोले कंस से कि लड़ मेरे से। तो सोचा कि कहीं इसमें बल ज्यादा हुआ और इसने मार दिया। तो बुद्धिमान ने उसे कहा कि स्त्री साधम हम युद्धम न करो हमें कदाचन। अरे मैं कभी औरतों से लड़ता हूं क्या? नहीं लेता स्त्रियों के साथ में। तो बोले फिर बुझाया से तू मेरी बहन हो रही मेरा भाई, बकासुर शान में भ्राता तुम तुम्हें भगिनी भव। आज तक मैं ये संबंध हो गया कि तू मेरी बहन हो गई और बकासुर मेरा भाई हो गया। तो तब से ही ये बकासुर को अपना भाई मानता और पूतना को बहन मानता। तो पूतना के तो बिचारे के प्रपाण गई बहन बनने के नाते। अरे दुष्ट के साथ कोई नाता जोड़ ले तो उसका अपहरण चला जाता है। ऐसा है कि दुष्ट के साथ बहन भाई का संबंध भी करना बुरा। अब बकासुर का भी वो भाई बना तो उसका भी होना ही चाहिए काम। तो कंसनी भी सोचा क्या है, बलवान तो है ही, उसको बुलाया आशा बंधी। तो सोचा कि ये जो मुझको ही निकल गया था, इतना बड़ा मैं प्रकांड दूर रहा मुझको निकल गया, तो नन्हा सा बच्चा उसको तो निकल ही जाएगा, कोई बात नहीं। तुरंत बक को बुलाया गया, समझा दिया गया उसको सारी बातें अच्छी तरह से कि देखो इस तरह से लड़का है, बोलो वही जिसने बहन को मार दिया था वो लड़का। हाँ बोले यही तो, वो डर तो लगता है हमको, जाने कहीं मार दे। तो कंस ने कहा बस इतने बड़े बहादुर होकर वो तो स्त्री थी बिचारी, इसलिए मार दिया। तुम कभी उसके हाथ से मरने वाले हो? नहीं नहीं, उत्साह आया बिचारे को। तो वो वहां से चलने को तैयार हुआ। अब यहां कथा शुरू करते इधर की कि स्वयं स्वयं वत्स कुलं सर्वे पायिष्यन्ते कदा गत्वा जलाशयाभ्याशं पायित्वा ततुर्जलम् ृशूर्वाला महासप्तमोस्थित तत्वसुरभद्रिन्नम गिरीशृंगच्युत सवै बको नाम महानसुरूपक आगत सहसा कृष्णं वीक्षतुंडो वृषदबली कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भकाः बभूरिन्द्रियाणि योजना प्राणं विचेतसः
തൂലം പ്രദഹന്തു അഗ്നിവത് ഗോപാലശൂനും പിതരം ജഗദ്ഗുരോ തച്ഛർജസദ്യോതിരുഷാക്ഷതം ബതസ്തുണ്ടേന ഹന്തും പുനരഭ്യപദ്യത തമാപതന്തം സഗൃഹ്യതുണ്ടയോർദൂർഭ്യാം ബകം കംസസഖാം സതാം പതിഃ തത്സുപശ്യത്സു ബാലേഷു ദദാര ലീലയാ മുദാ ബഹുഃ വീരനവദ്ധി ലോകസാം തദാവകാരം സ്വർലോകവാസിനഃ സമാകിരണ്യന്ദന മല്ലികാ ദിവേ സമീപരെ ചാനക ശംഖ സംസ്തവൈ സദൃശ ഗോപാലസുതാ വിശിസ്മരെ മുക്തം ബകാസ്വാദുപലഭ്യ ബാലകാ രാമാദോപ്രാണമേന്ദ്രിയോഗണം സ്ഥാനാഗതം തം പരിലഭ്യ നിർവൃത്താ പ്രമീയവത്സാന ബ്രജനേത്തി തജ്ജഗോ.
बकासुर के उद्धार की लीला. तो यहां शिकंद चंद्र मजे में खेल रहे हैं. वही उनका जो एक समान त्रिभुवन मोहन सौंदर्य, किसी अवस्था में इनके सौंदर्य में कभी कमी आती नहीं तो बढ़ते ही रहता है नित्य निरंतर. वही मधुरा के मधुर वो बालकपन की भंगिमा, वैसी ही वो गायों की वो बछड़ों की राशि आगे आगे चल रही, और वैसे ही सब गोप बालक खेल रहे आपस में. और सारे के सारे बलराम जी के नेतृत्व में, बलराम जी सबके सरदार, कन्हैया ने कह दिया था सब बालकों से कि देखो दादा की बात माननी पड़ेगी, भला हम सबके सरदार दादा हैं, दादा जो कहेंगे सबको मानना पड़ेगा. तो बलराम जी सबका नेतृत्व करते रहते और ये बस हंसते खेलते अपनी बिचिए बांके भूमों से सारी वनस्थली की शोभा निहारते, कभी बंसी बजाते और बंसी की स्वर लहरी से सारे वृंदावन के वृक्षों को रसप्लावित करते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़े चले जा रहे. देखा बड़ी सुंदर घास है, नरम नरम भूमि आ गई और पास ही एक सरोवर है. सरोवर के किनारे पर भी सुंदर सुंदर कोमल घास लगी हुई है और वहां जल निरंतर मिलता है, तो इसलिए और भी वो स्निग्ध बनी हुई है. इस सुंदर वन को देखकर, इस भूमि को देखकर भगवान ने कहा यहीं ठहर जाओ, बछड़ों को ठहरा दो यहीं पर, आज यहीं खेलेंगे. तो बोले काम करो, पहले इनको पानी तो पिला दो, बछड़ों को पहले पानी पिलाओ. सरोवर का बड़ा सुंदर निर्मल जल था, उसमें श्याम सुंदर ने कहा इतनी दूर से आए हैं इनको प्यास लग गई होगी, पहले पानी पिला दो. तो और वो जो जब नाचते कूदते फान के आए थे ना, तो उनको भी प्यास लग गई थी, सखाओं को भी. तो पहले तो सब ने अपने अपने बछड़ों को जल में उतारा. बछड़े जब बछड़ों में घाट अलग रहा, ये जलपान पानी पी चुके, तब उनको ऊपर ला के घास चरने को छोड़ दिए. अब वो खुद प्यास लगे बड़ा मीठा पानी सरोवर का, ये पानी अपना मीठा हो जाता, जहां ये जाते वहां पानी मीठा हो जाता. पानी देखता गया, आज हमारा सौभाग्य बल देवता स्वयं वहां पर आकर के और तमाम काम कदे सुमधुर बना देते, पानी को सुभाषित बना देते. जिस आकाश में जाते वो आकाश स्वच्छ हो जाता, वहां की वायु मधुर सुगंधमयी बन जाती, सब अपने अपने को धन्य करते. तो इन्होंने स्वत्सुकुलम सर्वे पाय शुद्ध एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासन पायित्वा प्रफुल जलम, इन सब ने बछड़ों को पानी पिलाया एक दिन और फिर स्वयं पानी वानी पीने लगे. उनको इतने में ये बाहर आ गए, बाहर आके लगे खेलने दौड़ने लगे इधर उधर. इसी समय देखा कि बड़ा भारी विशाल जंतु वहां पर बैठा, बड़ा सफेद सफेद उज्ज्वल वर्ण और बड़ा भारी, छोटा सा पक्षी नहीं था, बड़ा भारी विशाल पेपत दूषण वाला महासतम अवस्थितम, देखा कोई बहुत भारी जीव बैठा है यहाँ पर। तो बालक निर्णय नहीं कर सके कि ये क्या है। तो बालक अपनी अपनी बुद्धि से सोचने लगे, बोले कहीं बिजली गिरी होगी और बिजली से पहाड़ की चोटी तो टूट गई होगी, गिरीश तो टूट गया होगा, तो टूट पर वो जमीन पर गिरा होगा, तो गिरते गिरते यहाँ तालाब किनारे आ गया। तो तत्र वाला महासुतम सुतम तत्र सुर बद्र निर्घनम गिरे है श्रृंग निवस्थितम। सोचा कि ये तो बद्र के लगने से और पहाड़ का श्रृंग ही टूट करके यहाँ पर गिर पड़ा है। तो असल में सुखदेव जी कहते हैं कि वो पहाड़ वहाड़ नहीं था, सदै बको नाम महान स्वरूप बकर उपभ्रत, ये तो बगुले का रूप धारे हुए महान असुर रहा। तो कुछ कुछ बच्चे आगे बढ़े जो जरा बड़े उम्र के थे, दाऊजी ने कहा चलो देखो, तो ये आगे बढ़े और देखा तो है तो बगुला और बड़ा विशाल काय है, बड़ी भारी भारी उसकी काया है, उसने चोंच खोल रखी है, मुंह बाहर रखा है। वो तो बढ़ा था ना ताक में कि आए इधर तो चट से हवा से खींच रहे अंदर और मुंह बंद कर दें, मुंह बंद करके अंदर ही अंदर समाप्त कर दें। तो उन बिचारों के प्राण सूख गए, देखा रे राम राम ये तो मुंह बाए बैठा है। उनको क्या दिखाई दिया कि मानो ये जमीन को उखाड़ कर ऊपर ले जाने के लिए और नीचे की चोंच को उसने लगा रखा जमीन पर और ऊपर की चोंच को उठा रखा आकाश में, मैंने धरती की चोंच से उठा करके उखाड़ करके स्वर्ग में ले जाएगा ये, और मानो ये एक ही साथ देवता दैत्य मानव सारे जीवों के प्राण खींचने के लिए उन्होंने संदाशी लेकर के और काल देवता ही आ गया है यहाँ पर। देव धनुज मनुजाद सकल जीव जीवन आकर्षण कर्षणाय दुखतायत महासंघषम विवृत्त स्थित इव काल पुरुषः, ऐसा समझा उन लोगों ने। तो रूप बालक भगे सब डर करके भगे और प्राण प्रियतम सखा उनके, उनको तो डर लगता तो श्री कृष्ण की शरण में जाते और कुछ काम होता तो वहीं जाते, दूसरे को तो उनकी आंख है नहीं, मरना उनके चरणों में जीना उनके लिए सारा का सारा श्री श्याम सुंदर के सिवा कुछ नहीं। तो उनके प्राणाधार मित्र रहे श्याम सुंदर, तो भग करके उनकी तरफ चले। श्री कृष्ण भी उस भक्त की ओर देख रहे थे और अपने दो एक मित्रों से कह रहे थे, आकाराद पक्षी तुम जो सियात व्यातारा न तो पक्षीवत बकत तुम नवक साक्षात कूतवत स्थित रूपक्षत। अरे भैया देखो तो सही, ये दिखता तो है आकार से आकृति से तो पक्षी सा लगता है, लेकिन इसकी चेष्टा जब हम देखते हैं तो ये पक्षी किसी लगती नहीं है। तो ये नवक वक मन नवक वक ये बक नहीं है, बगुला नहीं है, बकासुर है। बको किम नवक साक्षात कूटवत सिद्ध रूपक्षते, ये कोई नई जात का बगला नवक बक है, नई जात का बगला है कोई। ये हम लोगों ने जो बगले देखे छोटे छोटे देखे नई जात का बगला, इसी से ये पहाड़ सा कूटवत पहाड़ सा मालूम होता है और असल में है बगला ही। तो संत तमाम जो सखा आ गई, सब ने आकर के चारों ओर से भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और सब डरे हुए थे, बोले अरे भैया कन्हैया देख पक्षी नहीं है। सखे नायन पक्षी अतु सकला नेव नो गुलितु इव कतारंभे न गुरुतर दंभे न केनात बका कतिना दानवे नहीं भवितव्यम तबिता पलायन मेवा अस्माकं पथ्यम। बोले भैया कन्हैया ये तो पक्षी फिर तू कहता पक्षी वक्षी नहीं है, ये तो हम सबको निगल जाना चाहते हैं, निगल जाएगा सबको ये।
भाग चलो। दूसरे बोले बड़ी जोर से जल्दी से बोले, अरे बोले देखते नहीं है, देखते नहीं है तुम भागोगे कैसे, भागने की जगह कहाँ रहेगी, तुम देखते नहीं कैलाश शिखर शिखरित रागी सर सही राग दीर्घ दीर्घ तेरा चंतु बता दस्य कदम पलाया ना माती। अरे देखते नहीं तुम ये कैलाश पर्वत के शिखर किससे भी बड़ा इसका शरीर, और ये कितना लंबा इसका ये चोंच चोंच देखो ना तुम, इसकी चोंच से भागो कैसे, जिधर जाओगे चोंच फैला के ले लेगा। अब तो साहब सब डर गए, बोले भैया तब तो भागने को भी जगह नहीं रही, तो अब क्या करें, अब तो तुम ही बचाओ, अब तो और कोई उपाय दिखा नहीं। तो श्री कृष्ण से श्याम सुंदर के मधुर मधुर अधरों पर मृदु हास्य की रेखा छा गई और झरने लगा, उससे वो सुधा बिंदु झरने लगे। अब उनके मुखमंडल का जो सौंदर्य था माधुरी लावण्य वो मानो निखर उठा। अब सखा के सब ये देख करके मत हो गए, भूल गए बगुले को थोड़ी देर के लिए, देख करके वो हंसता हुआ श्रीमुख और ये सब वो हंसने लगे, उनके भी होठों पर हंसी आ गई, आनंद में भर गए। वो श्रीमुख को देख करके भय कहाँ रहता, इतने में ही बोले कि नाशंक नहीं हूं, डरना मत भैया, अभी देखो सब ठीक करते हैं। तो वो सब जानते हैं कौन है, क्या करने आया है, क्या करने करते हैं, पर इनके मुख कमल पर मुंह पर ऐसा भाव इन्होंने बना रखा है मुग्ध भाव, मानो इस बक पक्षी के संबंध में इनको कोई ज्ञान ही नहीं। बोले देखो ना अभी हम जाते हैं ना, तो जैसे छोटा सा बच्चा सरल भाव से कहे देखो मैं जाता हूँ मैं ठीक कर दूंगा अभी उसको तुम डरो मत, इस प्रकार वो बकासुर की चोंच की तरफ जाने लगे। पुंडरी के लोचन स्तम जानन अजानन्यव तस्य पुंड सन्निधिमेव गमनेव अधिचंकार, जाने लगे चोंच की तरफ। अरे मेरे मध्य हो गया मध्य का नहीं आता, रुक जाते तो मानता नहीं, डर लगा सखाओं को कहीं जाके चोंच के पास गया उसने निकल लिया तो इनके मुख पर कोई भय नहीं। सरल बालक वत जैसे बच्चा आग में हाथ डालने जाए तो उसके मन में एक उल्लास रहता है, बड़ी अच्छी चीज है, चमक चमकदार दिख रही है, चलो खिलौना खिलौना ले लेंगे, तो यहाँ तो खिलौना ही है और क्या है। तो जरा सी भी भय की कोई रेखा छाया भी नहीं, कल्पना भी नहीं, आखिर लोग नायक है ना भगवान। तो बच्चों ने देखा ये तो डरता नहीं, तो आपस में काया खुशी की, बोले जितना उतना मर गई थी इस प्यार से, नमामि को नारायण नारायण आया होगा इसको बचाने के लिए, तो जाता है तो अपने क्यों बोलो जरा देखो क्या होता है। तो बच्चे सब देखने लगे, अब बच्चों की आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई, बच्चे देखने लगे अकुतो भय भय अखिल लोक सहेल मधुमुख सरपंतम, इतने में देखा क्या हुआ अकस्मात की वो जो ध्यान लगाए बैठा था बगुला वो उचका, और उसी समय पास आ गया, और पास आगे उसने क्या किया कि जो चांस फैलाई हुई थी तो नील सुंदर को नीलमणि को निगल गया। ओह अब तो इनके आगत सहसा कृष्णम दीक्षित बिंदु वृषद बड़ी, ये ब्रज के जीवन श्याम सुंदर नीलमणि को बक ने अपने मुंह का ग्रास बना दिया। अब तो वहां पर सारा बन रो उठा,
जितने पक्षी सब बैठे हुए थे वृक्षों के डालियों पर, मधुर मधुर काकली कर रहे थे, उन सब के आंसू बहने लगे, आर्तनाद करने लगे, बोले सब कांपने लगे, लताएं बन के जो मृग रहे हरिण, ये सब करुण चीत्कार करने लगे, बंदर रोने लगे, और अंतरिक्ष में सुनाई दिया, देवता ने सब ने क्रंदन आरंभ कर दिया। और बिचारे ये गोप बालक, इनकी तो वो दशा हो गई जैसे प्राण निकल जाए पर इंद्रियों की होती है। कृष्ण महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा रामादेवर्भकाः बहुरिंद्रियानेव बिना प्राणं चेतसः। जैसे प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की दशा होती है, सब के सब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, इसी प्रकार जब श्री श्याम सुंदर सबके प्राण स्वरूप जब ये बकासुर के मुंह में समा गए, तो दाऊ जी और गोप शिशु सबके सब इनमें फिर रखा ही क्या था, प्राण निकल गए तो निष्प्राण शरीर में जैसे इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के गोलक कुछ काम नहीं करते, आंख जो भी तो दिखती है पर दिखाई नहीं देता, कान के गोलक दिखते हैं पर सुनाई नहीं देता, इस प्रकार सारे गोप बालक बेहोश हो गए, चेतना शून्य हो गए। जब बक गसुर कुंवर नंदलाल बल समेत सब ब्रज के बाल, भय विचेतन चेतन ऐसे प्राण बिना इंद्रिय बन जैसे। लेकिन योग शक्ति ने काम किया, बेहोश हो गए पर आंखें खुली नहीं सकती, आंखें नहीं मिली, और लीला देखने योग्य आंखों की शक्ति भी नहीं रही। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, न अपने पराये का भावरा कोई अनुभूति रही नहीं। अब इधर क्या हुआ, जब उस बगले ने असुर ने श्याम सुंदर को अपना ग्रास बना लिया, निगल लिया, तो क्या तू ये समझे कि वो उनको निगले रख सकेगा। जिनके एक अंश की अभिव्यक्ति से और अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति के एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड धूल के कण के समान विलीन हो जाते हैं, जो जगत की रचना करने वाले की भी रचना करने वाले हैं, उन भगवान को, उन ऐश्वर्यमय भगवान को ये नन्हा सा असुर अपने पेट में रख सके, ये क्या कभी होने की बात है। ये तो ये भी एक लीला रसा स्वादन की पद्धति है, वो भी एक नवीन शैली है, भगवान अपनी लीला रसा स्वाद करवाते हैं, करते हैं, तो वहां भी खेलने गए हैं उस राक्षस के उदर में भी, ये वहां भी उनका रंगमंच है, वो पेट भी खेलने की जगह है, क्रीड़ा भूमि है, इसीलिए वहां खेलने के मन में आ गई, बाहर खेलते भीतर खेलने, भीतर दूसरा कौन खेलता है, अरे हम सबके पेट में तो कौन खेलता है। तो आज वो स्वयं उस असुर के पेट में खेलने के लिए चले गए। अब वो निगल तो गया, अब उसके कंठ में आग लग गई, जलने लगा उसका चारू, जलने लगा उसका कंठ। अब ये उल्टी बात में तो वहां लीला शक्ति की बात है, कहते हैं कि भाई जिस श्री कृष्ण के नाम का आभास जीव पर आते ही नरक की सारी भयानक ज्वालाएं शांत हो जाती, जो परम शीतलता के समुद्र हैं, उन भगवान को अपने अंदर लेकर उनके श्रीअंगों के स्पर्श से ही असुर के अंदर दाह पैदा हो जाता है। भगवान के परम शीतल चरण कमलों का स्पर्श पाकर बक का कंठ जलने लगता है। उल्टे बात हुई। इतनी उसे वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई कि वो रख नहीं सका अंदर, निगलना पड़ा, उगलना पड़ा। तुरंत उसने उगल दिया कि प्राण को बचे कैसे, ही इसको मारने की बात तो भूल गया। अब उसके मन में आए कैसे ही प्राण बच जाए, जल्दी इसको बाहर फेंको, ये तो आग का गोला ही आ गया मानो अंदर जलता हुआ। जलने लगा तमाम कंठ उसका, तो उसने तुरंत उगल दिया बाहर, बाहर आ गए। पर उसने सोचा था कि भाई मुझे जलाया तो क्या है, अंदर इतनी देर तक रहा, मेरा तमाम अंदर जहरीला ही जहरीला उधर, तो ये जल गया होगा जरूर, ये तो मरा ही निकलेगा, जिंदा थोड़ी निकलेगा ये। किंतु समय की बड़ी विपरीतता, विपरीतता का अवसर आ गया, उसके उद्धार का अवसर आ गया। देखा तो ये तो हंसते खेलते बाहर निकल गया। अब उसको बख के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको तो कहीं कहीं जरा सा घाव भी नहीं लगा, ये तो जैसा का कैसा जीव का तो अक्षत आ गया। तो बड़ा गुस्सा आया उसको, तो पास आ गया, तम ताल मूलम प्रदहंत मग्निवत गोपाल सूनुम पितरम जगद गुरो हो चक्षद सद्यो तुषाक्षतम बकस्तम दिन हंतम पुनरभ्यपद्यता। जब वो बाहर भगवान निकले और उनको देखा कहीं कोई खरोंच भी नहीं लगी। अब बालक देख रहे थे ना, दृष्टि शक्ति थी उनकी, आंख नहीं मुदी थी, तो देखा कि आ गया कन्हैया तो बाहर, और देखा कि तो हंस रहा है खड़ा खड़ा, तो बस ज्ञान शक्ति वापस लौट आई उनकी, सब के सब चेतन हो गए और सबके मुंह पर हंसी छा गई। अब खेल का अगला अंश, तो भगवान ने देखा अब विलंब करना ठीक नहीं, तो समीप आ गए। तो समीप आगे क्या किया उन्होंने, तो कि दोनों चांचों को पकड़ लिया, दोनों बाहर के ऊपर का नीचे का, दोनों को नन्ही नन्ही वो कर कमल रहे भगवान के, पर उसके लिए तो भीषण यमराज के कर्म से भी अधिक भयानक बन गए उसके लिए, उसको बड़े विशाल दिखे। इधर ये बच्चे देखते कि ये कन्हैया क्या कर रहा है, एक चांस पकड़ रहा कहीं फिर निकल गया, तो बच्चों को तो डर हुआ, पर इन्हें तो कोई डर वर नहीं, इन्हें तो अपनी लीला करनी। और उसको मालूम हुआ कि ये तो मानो चोंच यमराज नहीं, फलद यूं हिलाता है कि छोड़ दे कहीं, पर अब क्या छूटे, पकड़ लिए दोनों तो हिस्से नंदलाल ने, और क्षण भर भी नहीं लगा, यूं पकड़ के यूं चीर दिया जैसे तिनका चीर देते हैं, इस प्रकार बिना गांठ का, तिनका गांठ हो तो कहीं अटके नहीं, बांस चीरने में तो आप गांठ आ जाती है बीच में, और कोई ऐसा तृण हो जिसमें गांठ नहीं सी रही हो, चट से चीर दे। समापतंतम सनगह तुंडयो दूरभ्याम बकम कंस सखम सताम तथे पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदाहो वीरन वद्योग कसाम तब लीला आसक्त में लख शिशु दुखी अपार कर कमलन सो चोंच गई करे फका द्वेपार। अब भगवान ने तुरंत ही वो तृण की तरह से दोनों चोंचों को लेकर के चीर डाला। अब तो महाराज देवताओं के प्राणों में प्राण आ गए, देवता इतने डर गए थे, मूर्छित होकर पड़े थे बेचारे कि ये निगल गया, ये अब तो बड़ी बुरी चीज हो गई। देवता लोगों ने पहले के जान ये विश्वास होता था कि पहले से बड़े फूल इकट्ठे कर रखे थे, तमाम नंदन कानन के हजारों हजारों पुष्प उन्होंने रख छोड़े थे अपने अपने दीवानों में। अब वो आनंद में झूम झूम करके और नए नए वो तो कदा बकारिम स्वर्लोक वासन समाकिरण नंदन मल्लिका देवी समी डेरे चानक शंख संस्तवई तद्वीक्ष गोपाल सुता विशेष में। सुखदेव जी कहते हैं कि वो नंदन कानन से ये मल्लिका, जूथी, मालती, चंपक, नागेश्वर, बेला इत्यादि वहाँ दिव्य है, देवताओं के दिव्य नंदन कानन के फूलों को ले करके और वो श्रीअंग नंदन के श्री अंगों पर बरसाने लगे। सारी वनस्थली, सारी वनभूमि वो देवलोक के देव सुगंध से संपन्न फूलों से ढक गई। ठीक मैंने सारी वनस्थली में फूलों का बिछौना हो गया, बिस्तर बन गया फूलों का। और देवताओं ने कहा कि बजाओ आज जब अब धुंधुबी बजे, तो वहां पर धुंधुबी बजने लगी, नगारे बजने लगे, शंख बजने लगे और देवता लोग सुंदर सुंदर स्तर पाठ करने लगे। सारा अंतरिक्ष ये देवताओं के मधुर गान विनाद से, वाद्य की ध्वनि से तमाम भर गया। बार बार देवता लोगों के मन में तो आज धात ही नहीं और बरसाने थोड़ा सा फूल, बोले हम नहीं लेकर के आए और बसाए। अब फूल लाए और बसाए, लाए और बसाए, और स्तुति करते करते अघावनी कितनी स्तुति करें उसकी। नए नए भावों का उदय, देवता सब जानने वाले और इनके गुणों का पार नहीं। अनंत के स्तवन का अंत कैसे आवे, अनंत के रूप का अंत नहीं, अनंत के गुणों का अंत नहीं और उनके स्तवन का अंत नहीं। तो देवता मधुमंगल ने कहा, मधुमंगल बोले कि देखो तो सबसे क्या हो रहा ऊपर में, कि फूल आ रहे ऊपर से, देखो हम देख रहे हैं, वो देखो ना विमान बहुत से हैं, हवाई जहाज बड़े बढ़िया बढ़िया, और उनमें तमाम ये देखो ये देवताओं की देवियां बैठी हैं और ये देवता बैठे हैं, ये तमाम फूल बरसा रहे हैं, ऊपर से बरसा रहे हैं। वो सुनते नहीं है, गा भी रहे हैं। बोले बाजे तो सुने हमने, पर बाजे वहां बजते हैं क्या? बच्चों ने कहा वहां बजते हैं। तो अब बड़ा सुंदर वहां का समारोह हो गया। तमाम बच्चे ये देख सुन करके तद्वीक्ष गोपाल सुता विशेष मरे, सबको आश्चर्य हो गया, सब अत्यंत विस्मय में डूब गए। पर देवताओं के कारण बाद देखिए कितनी देर तक ये देखें, अब तो उनको सबसे ज्यादा तो इस बात की प्रसन्नता है कि ये हमारा कन्हैया बकासुर के मुंह में से निकल गया, मार दिया वार दिया, ये बात तो गौण है, ये हमारा प्यारा मित्र, और ये देखो ना इसका खतरा बड़ा मुंह था चांच फैलाए हुए और इसके मुंह से ये निकल गया। जैसे मरे हुए शरीर में प्राण लौट आवे, इसी प्रकार में पहले ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का भी संचार हो गया। अब इनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, सभी उठे और दौड़ दौड़ करके अपने गले लगा लिया, बांध लिया गुरुपाश ने। उसने देखा हमने बांधा, उसने देखा हमने बांधा, ये सबके बंध गए, सबके गले लग गए, सबके छाती से चिपट गए। एक ही साथ ईश्वर ने काम किया। अब महाराज उनके सुख का कोई ठिकाना नहीं, उनके सुख का कोई ठिकाना नहीं। ये मुक्तम बका शायद उपलब्ध बालका रामागे प्राणेन्द्र युगन स्थानागतम निर्भरता प्रदुनीय वत्सान भूमि तजगु हो। अब इनके प्राण आ गए और ये अब इनमें जब कोई दुख के बाद सुख आता है तो वो सुख बहुत प्यारा रहता है। जो सुख में सुख आता रहता है वो सुख भी वहां का दूसरा है, वहां किसी भी सुख से कभी चित्त उबता नहीं, नित्य नया सुख ही दिखता है वहां पर। ये हमारे सुख में, विषय सुख में और प्रेम सुख में ये बड़ा अंतर है। विषय सुख है, बार बार मिलता रहे तो मन उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। हमारे मन में किसी विषय की चाह हो और न मिले तब तक बड़ी उत्कंठा रहती है, और मिलने के बाद कुछ समय तक उसमें मन बड़ा रमता है, बड़ा प्रिय मालूम होता है। पर वो चीज अगर हमेशा पास रह गई तो फिर उसकी उपेक्षा होती है, उसकी तरफ मन खींचता नहीं, चाहे वो चीज पहले कितनी प्रलोभन की रही हो, कितनी लुभाने वाली रही हो, मिलने के बाद कुछ दिनों में उसकी उपेक्षा हो जाती है। ये प्रेम राज्य में नहीं होता। प्रेम राज्य में कभी भी प्रेमास्पद का कुछ भी पुराना होता ही नहीं। ये प्रेम राज्य का नियम है, जहां पर विशुद्ध प्रेम है वहां पर अनुराग की सामग्री का सौंदर्य कभी भी घटता नहीं, निरंतर बढ़ता रहता है, अवस्था कुछ भी बदल जाए। तो वहां ये बात थी नहीं, तथापि ये लोक दृष्टि में कहने के लिए सुख में सुख आता है तो उसकी कोई परवाह नहीं होती, पर भयानक दुख के बाद जब सुख आता है तो वो सुख बड़ा प्रिय मालूम होता है। तो बड़ा दुख हुआ था जब ये श्री कृष्ण को निगल गया राक्षस, तो बड़ा दुख हुआ कि अब तो हम मारे गए, प्राण कंठागत ही नहीं आए, प्राण निकल से गए, केवल योग माया की शक्ति से आंखों में वो रोशनी बनी रही, इसके सिवा सारा प्राणों का स्पंदन बंद हो गया, श्वास चलना बंद हो गया, नब्ज देखे तो उसमें कुछ नहीं, लेकिन जब ये देखा कि अब तो ये बड़ा सुंदर श्याम सरोना ये सामने खड़ा हंस रहा है तो उनके प्राणों में प्राण आ गए। दैत्य का क्या हुआ? तो कहते हैं बस उसको उसके संबंध में कुछ पूछना है क्या? वो तो अनादि जो भगवत प्रवाह था उसके लिए उसके बहुत दूर निकल गया, ये प्रभाव कहीं पीछे रह गया, उसके लिए रहा नहीं, उसमें से ज्योति निकली और श्री कृष्ण ने समा दी। तदा मृतस्य दैत्यस्य ज्योति कृष्ण समादिशत, उसके अंदर से एक ज्योति निकली और वो भगवान के अंदर में समा गई। तो पूछते हैं कि भाई ये था कौन? ये जो वत्सा, ये जो बका सुर रहा, ये कैसे बका? ये तो सौभाग्य मिलना मुश्किल है ना। ये भगवान के हाथ से जिसका इस प्रकार से मरण हो, इसका भी कोई इतिहास होता है। तो ये जिज्ञासा पैदा हुई कि भाई ये था क्या? तो ये पुराना इतिहास है, हयग्रीव नाम का एक राक्षस था। उस हयग्रीव के लड़का था एक, उसका नाम था उत्कल। पुरानी बात, तो उस उत्कल बड़ा बलवान था, तो उसने तमाम देवताओं को जीत कर और सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके वो मदमत्त हो गया। भगवान के भक्त किसी भी विजय की प्राप्ति से मदमत्त नहीं होते, उनकी भक्ति भगवान में बढ़ती है कि ये भगवान ने कार्य किया। और जो विषयी लोग हैं वे वहां पर अपनी सफलता अपनी बुद्धिमत्ता मानकर बलगर्वित हो जाते हैं। तो असुर रहा, असुर और देवता में यही अंतर है, आसुरी और दैवी संपत्ति यही अंतर है। असुर अभिमानी होता है और भक्त दीन होता है, वो भगवान के चरणाश्रित होता है, वो भोगाश्रित होता है। तो उसके मन में बड़ा गर्व हो गया, दुर्मदांध, तो वो जहां तहां घूमने लगा। अब उत्पात करने के हमने ऋषियों में जाके छेड़े, ऋषियों के आश्रमों पर जा, वो बेचारे निरीह, किसी से बोले नहीं, किसी के बीच में बिघ्न डाले नहीं, कुछ करें करावे नहीं, और उनसे जाके छेड़खानी करें। पर ऋषि बड़े वो